سرخیوں میں
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज के इस कार्यक्रम का हमारा विषय है पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले और दोनों देशों के बीच आपसी संघर्ष। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शामिल हैं हमारे विशेषज्ञ, विदेश मामलों के जानकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष वी पंत। डॉक्टर हर्ष वी पंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार।
पाकिस्तान ने काबुल पर जो हमला किया और जिसमें 400 लोगों की मौत हुई, 250 से ज्यादा घायल हुए, और ये हमला एक अस्पताल जो एक नशा मुक्ति केंद्र था उस पर किया गया हमला था, और इस हमले की भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपने वक्तव्य में निंदा की और इसे एक बर्बरतापूर्ण हमला और एक अमानवीय कृत्य बताया। और साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में ये स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ ये हमला था और साथ ही जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता है उसके लिए भी इस हमले को विदेश मंत्रालय ने खतरा बताया। और इसके अलावा हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने भी इस हमले को लेकर चिंता जताई है। तो हम इसी हमले और दोनों देशों के बीच आपसी संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर पंत, हम आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले तो ये किस तरह से आप इस पाकिस्तान के काबुल और एक नशा मुक्ति केंद्र पर किए गए हमले को देखते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान से की ओर से जरूर ये कहा जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई का एक कड़ी थी, लेकिन वास्तव में जिस तरह से हम देखें तो एक नशा मुक्ति केंद्र पर यह हमला था, तो किस तरह से इस हमले को देखा जाना चाहिए?
देखिए, ये तो बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध है लेता जा रहा है। इस तरह से टारगेटिंग करना एक नशा मुक्ति केंद्र की, उसको एक मिलिट्री टारगेट के तौर पर प्रस्तुत करना, ये जिस तरह की पाकिस्तान का चाल चरित्र रहा है उसी में एक कड़ी और जोड़ता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि इसके काफी और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन काफी और सोर्सेज ने किया है कि वहां पर वो वाकई एक नशा मुक्ति केंद्र था और वहां पर जिस तरह से जानी गई है और जिस तरह का वहां पर नुकसान हुआ है उसको देखते हुए, मुझे लगता है एक तरह से पाकिस्तान की जो एक स्ट्रैटेजी है जिसमें वो दुनिया का डाइवर्जन क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की तरफ है उसको इस्तेमाल करते हुए वो कोशिश ये कर रहा है कि पूरी तरह से अफगानिस्तान की ओर अपना जो की जो सैनिक क्षमता है उसको दर्शाया जाए। और जो पिछले कुछ महीनों से, पिछले एक साल से जो ये संकट अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में चल रहा है उसको एक नया मोड़ देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी भारत ने बड़ी सही तरीके से निंदा करी है और देशों ने भी इसकी निंदा करी है। और कई इंडिपेंडेंट जो इसका वेरिफिकेशन हो रहा है उससे पाकिस्तान का एक जो क्लेम है वो धीरे धीरे ध्वस्त ही होगा और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर मुझे लगता है और प्रेशर पड़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है कि वो किस तरह से इस समस्या को आगे ले जाएंगे अफगानिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि तालिबान भी अब चुप नहीं बैठेंगे और तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है उसको हम बढ़ता हुआ एक स्पाइरल देख रहे हैं साउथ एशिया में।
जी, हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे आसान शब्दों में इस विवाद और इस संघर्ष को थोड़ा समझना चाहेंगे। पृष्ठभूमि आप बताएं कि ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच का ये संघर्ष कैसा है और ये आपसी संघर्ष जो है ये अभी किस स्थिति में है, तो इस बारे में आप अगर कुछ हमारे श्रोताओं को बताना चाहें।
देखिए, मुझे लगता है जो अभी लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से ये लगातार दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी एक समस्या बनी हुई है और बीच बीच में दोनों तरफ से वायलेंस होता है और एक्शन लिया जाता है, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं ये फंडामेंटली अगर हम देखें तो ये ड्यूरन लाइन का जो सवाल है, जो 2600 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, ये 1893 इसमें इसको ड्रॉ किया गया था लेकिन किसी भी अफगान सरकार ने इसको फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया है। और वो और जो ये बाउंड्री करती है वो एक जो पश्तून ट्राइबल लैंड्स है उसका विभाजन करती है और एक तरह से एक हिस्टोरिकल ग्रीवेंस जो है उसको आज की जो ज्योग्राफी है उसमें एम्बेड करती है। तो कहीं पर ये समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन हुआ क्या है कि जब तालिबान की वापसी हुई 2021 में तो पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डिविडेंड मिलेगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान ने जिस तरह से समर्थन दिया था और जो एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का कि तालिबान वापस आए उसको देखते हुए पाकिस्तान को लगा था कि अब जो हमारी रणनीति है उसको वो और ज्यादा सार्थक होगी, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो अफगानिस्तान को एज ए स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये सोचा कि वो काबुल से कंट्रोल हो पाएगा, लेकिन उसके उल्टा नजर आया कि जो टीटीपी है उसने और ज्यादा अटैक्स किए, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया और उसमें जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट हुआ, न सिर्फ कि पाकिस्तान की फौजों को टारगेट किया जा रहा था, बल्कि उनको ऐसा लगा कि जो एक लेवरेज क्रिएट किया था तालिबान के ऊपर वो खत्म हो रहा था। अब तालिबान और अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन तरीके से अपने डिसीजंस ले रहे थे और वो पाकिस्तान का जो एक रवैया था उसको पुश बैक कर रहे थे। तो उसमें बैक एंड फोर्थ चलता रहा और सीज फायर की बात हुई दोनों के बीच में, सीज फायर हुआ भी लेकिन वो टिका नहीं, क्योंकि तालिबान ने ये बात स्पष्ट कर दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है, उनकी टेरिटरी पर कोई अटैक होता है, तो उसका जवाब देंगे। और इसीलिए हमने देखा कि ये चलता रहा। और इसमें एक कड़ी मैं और जोड़ दूं कि इस्लामाबाद ने बार बार पिछले कुछ सालों से ये बात कही है कि जो काबुल है वो दिल्ली की तरफ झुकता जा रहा है, और इसको लेकर और खासकर जो जो लास्ट ईयर अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी दिल्ली आए थे और एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया था जिसमें टेररिज्म के खिलाफ साथ काम करने की बात कही गई थी, तो मुझे लगता है एक तरह से वो भी पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन का हमको नजर आया। और ये जो अटैक हम जिसके हम आज जिक्र कर रहे हैं वो भी एक पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन में कि मिलिट्री को टारगेट करने के बजाय सीधे एक नशा मुक्ति केंद्र को टारगेट किया जाए या ह्यूमैनिटेरियन एक एंटी ह्यूमैनिटेरियन एक्ट किया जाए, मुझे लगता है वो एक फ्रस्ट्रेशन हमको नजर आ रहा है पाकिस्तान के रवैये में।
जी जी, जैसा कि हमने देखा भारत के भी अपने वक्तव्य में या अपने दृष्टिकोण में कि उन्होंने कहा कि ये जो हमला है या जिस तरह से ये संघर्ष है कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया के लिए एक जो स्थिरता और शांति है उसके लिए भी एक खतरा है। कैसे आप इस तरह के एक आपसी संघर्ष है और जो पाकिस्तान लगातार एक हमले कर रहा है अफगानिस्तान पर उसको आप देखते हैं, और क्या पाकिस्तान की जो अंदरूनी अपनी चुनौतियां हैं सुरक्षा की उसकी एवज में उसको छुपाने के लिए भी क्या इस तरह का जो हमला लगातार अफगानिस्तान के साथ संघर्ष को बढ़ाने की दिशा में है उसको लेकर भी इस हमले को देखा जा सकता है?
बिल्कुल, और मुझे लगता है वहीं पर वो इसकी जड़ में है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाने में जब सक्षम नहीं हो पाता है तो वो बाहर डाइवर्ट करता है चुनौतियों को। हिंदुस्तान काफी इसको भुगत चुका है, हिंदुस्तान के सामने ये चुनौतियां बहुत सालों तक रही हैं, लेकिन अभी अफगानिस्तान ने एक इजी टारगेट दे दिया है पाकिस्तान को। जब भी अंदरूनी चैलेंज होता है, अंदरूनी डिसफंक्शनैलिटी होती है, एक तरह से बाहर एक विरोधी को ढूंढता है और इस समय अफगानिस्तान उसको मिल गया। देखिए, इसमें कई मुद्दे आपने उठाए हैं। एक तो ये कि जो अफगानिस्तान के लोगों को जब ये लग रहा होगा कि जब तालिबान सरकार आई उसके बाद कम से कम अब जो वायलेंस है वो कम होगा, जो हर दिन बम फट रहे थे वो कम होंगे, एक नॉर्मल लाइफ चलेगी, मुझे लगता है ये उसकी तरफ एक बड़ा धक्का है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है। और पाकिस्तान लगातार इसको बढ़ाता जा रहा है और खासकर जो ये टारगेटिंग इस तरह के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बजाय आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें वो मुझे लगता है नजर आ रहा है धीरे धीरे जिस तरफ पाकिस्तान का रवैया जा रहा है। और उसमें जो हिंदुस्तान की तरफ से तालिबान को मदद दी जा रही थी वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा रही थी, ट्रेड फैसिलिटेशन की बात हो रही थी, क्योंकि ट्रेड के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता है, तो इसलिए एक लेवरेज पाकिस्तान की हमेशा बनी रहती है। तो जब हिंदुस्तान तालिबान सरकार के साथ बातचीत कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसके केंद्र में जो ऑर्डिनरी अफगान लोगों की जो समस्याएं हैं वो हैं। अब अगर यहां पर पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि देखिए इसमें एक चीज और है कि क्योंकि हिंदुस्तान आज अपनी सुरक्षा करने में ज्यादा सक्षम है, हिंदुस्तान का बॉर्डर ज्यादा सुरक्षित है, तो पाकिस्तान दूसरे बॉर्डर्स को की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है और वहां पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। तो इसका लेकिन क्योंकि हमारा जो ये पड़ोसी रीजन है, ज्योग्राफी है, उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ता है, और इसीलिए भारत ने कहा कि ये आगे आने वाले समय में भारत के लिए, पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि इसके काफी सारे परिणाम हो सकते हैं। जो इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में हमने पहले भी देखा, जब जब अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहती है तो वो पूरा पूरे रीजन को इफेक्ट करती है, एक्सट्रीमिस्ट मोबिलाइजेशन होता है, जो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं उसमें बाधा पड़ेगी, और कहीं पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, उनको फिर से ये मौका मिल जाता है कि वो बाकी देश हैं उनको टारगेट करें, और हिंदुस्तान ने पहले भी इस बात को सहा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं पर जब भी इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में बढ़ती है और पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है, उसका जो परिणाम है वो अफगानिस्तान के लोग तो भुगतेंगे लेकिन सारे रीजन पर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए भारत ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसकी निंदा भी करी है और ये भी कहा है कि इसको इमीडिएटली रोकना चाहिए।
बिल्कुल, तो जैसा कि हमारी चर्चा में निकल कर आया कि इस तरह के हमले को एक मिलिट्री टारगेट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, और भारत ने भी सख्त शब्दों में ये कहा है। और एक और बात जो महत्वपूर्ण कही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर पर इस हमले के दोषियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून है वो किस तरह से इस हमले को इस दृष्टि से कैसे देखा जाना चाहिए और कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस हमले को लेगा?
देखिए, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ तो वॉर के समय भी आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अनुसार तो आप वॉर सिचुएशन में भी सिविलियन टारगेट्स को आप टारगेट नहीं कर सकते, आपको मिलिट्री रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना है, आपको स्पेसिफिक आपकी जो टारगेटिंग है वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए आप, और इसके खिलाफ कानून बने हुए हैं। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ की समय जो परिस्थिति है वो भी काफी दुर्बल है, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म से वायलेंस का उपयोग हो रहा है, अलग अलग तरीके से जो अमानवीयता दिखाई दे रही है, और बड़े देश खासकर इसका खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या इंटरनेशनल लॉ के तहत इस पर कोई सख्त कार्रवाई होने की हमको उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन भारत ऐसा देश है जिसके बड़े देशों के साथ, सभी ब्लॉक्स के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत को इस मुद्दे को एम्पलीफाई करके दुनिया के सामने जरूर लाना चाहिए कि इस तरह से एक देश जो अभी अभी 2021 के बाद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, जैसे अफगानिस्तान कर रहा है, उसमें इस तरह से फिर से अस्थिरता फैलाने की जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आवाज जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसी फिर सिचुएशन ना हो जाए कि दुनिया तो दूसरी तरफ देख रही है और अफगानिस्तान एक बार फिर, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है, जो हमेशा से जिसको एक समय अफपाक कहा जाता था, वो जो बॉर्डर एरिया है वो फिर से दुनिया के लिए अस्थिरता का एक मूल केंद्र बन जाए, जो पहले हो चुका है। और अगर इस तरह की परिस्थिति रही, आगे आने वाले समय में भी ऐसा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को एक स्थिरता लाने में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता, और उसको ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान क्योंकि एज ए सॉवरन नेशन अपने डिसीजंस ले रहा है, तो उसको ज्यादा अस्थिर किया जाए जिससे कि उसकी डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर फिर से बन जाए। तो मुझे लगता है ये एक जटिल समस्या है, और भारत ने इस बात को दुनिया के सामने उठाया है और आगे भी उठाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि अंतर्राष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ इसमें कोई कुछ संज्ञान देगा, तो मुझे लगता है आज की परिस्थितियों में होना थोड़ा सा कम लगता है।
अंत में एक और टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा, जैसे पश्चिम एशिया का संघर्ष भी चल रहा है और दक्षिण एशिया में भी हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष को देख रहे हैं, ऐसे में आने वाले दौर में आप कैसे देखते हैं जो एक वैश्विक स्तर पर संघर्षों का दौर चल रहा है?
देखिए, ये तो इस समय मुझे लगता है कि हम एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट से गुजर रहे हैं जहां पर काफी सारे क्राइसिस एक साथ सामने आ रहे हैं। वेस्ट एशिया में देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, लगातार जो लड़ाई है वो एस्केलेट होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा देश उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं, और आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की बात करी, तीसरी तरफ बड़ा युद्ध यूक्रेन रशिया का चल ही रहा है, उसमें भी कोई कमी नहीं आई है, वहां भी एक अस्थिरता बनी हुई है यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में। तो कहीं पर जो समस्याएं हैं दुनिया भर की वो बन रही हैं, क्योंकि जो एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी इंटरनेशनल ऑर्डर है वो उसमें विघटन दिख रहा है, फ्रेगमेंटेशन दिख रहा है, बड़ी शक्तियां एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, उनके अपने हित जो हैं वो टकरा रहे हैं, और उस टकराहट के कारण जो जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। यूएन की बड़ी बात होती थी, आज यूएन मौन है, वो किसी भी मुद्दे पर उसका कोई पॉजिटिव या फर्म इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए एक लीडरशिप वैक्यूम दुनिया में दिख रहा है। अगर अमरीका जैसे देश ही युद्ध की शुरुआत करेंगे तो युद्ध को रोकने के लिए कौन काम करेगा? और मुझे लगता है वो एक बड़ी समस्या दुनिया में उभर रही है, और उसके सामने इस समय कोई समाधान, आसान समाधान शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी कुछ समय तक।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष विपंत, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस विषय पर अपना एक विस्तृत और सरल शब्दों में विश्लेषण हमारे सुनने वालों के सामने रखा।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
सुर्खियों में